दिन भर तारीख 16 जुलाई दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश, बोले राज्य सरकारें करें कार्रवाई। कांग्रेस ने कहा,
ऐसा ही एक बयान प्रधानमंत्री ने पहले दिया था, सब नाटक उनसे कह रखा है, तुम करे जाओ और यहाँ हम बयान देते रहेंगे लोगों को दिखाने के लिए।
बिहार में महागठबंधन में जारी तनाव के बीच दिन भर बैठकों का दौर।
नहीं, किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के चुनाव की चर्चा हुई है।
और संग संग गुनगुनाओगे मैं, याद करेंगे महान संगीतकार सज्जाद हुसैन को।
भूल जा ए दिल मोहब्बत का फसाना, किसी से दिल।
खबर विंबलडन की भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और कल ही राष्ट्रपति चुनाव भी होना है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने का भी अपील की है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी दलों को भी साथ आने की अपील की। अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक बस जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिर गई है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा रामबन जिले में हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
अमरनाथ जाने वाली बस जम्मू से पहलगाम जा रही थी, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बानिहाल के नचलीना इलाके में गहरी खाई में जा गिरी। घायल 19 यात्रियों को श्रीनगर के स्किम्स और SMHS अस्पताल लाया गया है, जबकि 8 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सेना, पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान में हिस्सा लिया। तहम अभी इस बात का पता नहीं चला है कि बस किन परिस्थितियों में खाई में जा गिरी। पुलिस ने घायल यात्रियों से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी है।
ये थे श्रीनगर से माजिद जहांगीर। देश के कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। गुजरात के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले 48 घंटों में गुजरात में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल ने 400 से ज्यादा लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से सुरक्षित निकाला है। सौराष्ट्र के राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और कच्छ जिले में बाढ़ से बुरी तरह ये प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा असम और ओडिशा भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में पिछले 2 हफ्तों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी PTI ने बताया है कि भारी बारिश के कारण रायगढ़ जिले में बाढ़ आ गई है और कई ब्रिजों, रेल और सड़क मार्गों को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ का कहर बरपा है। वेनेजुएला में संविधान में सुधार के लिए एक नई असेंबली के गठन के सवाल पर अनाधिकारिक जनमत संग्रह के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। कई महीनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उम्मीद है कि लाखों लोग इसमें हिस्सा लेंगे। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने करीब 2000 जगहों पर वोटिंग के लिए केंद्र बनाए हैं। इसी सवाल पर इसी महीने के अंत में आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से जनमत संग्रह कराया जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि इस असेंबली से वेनेजुएला को राजनीतिक और आर्थिक संकट से निकालने में मदद मिलेगी। अप्रैल से जारी हिंसा में वेनेजुएला में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस अनाधिकारिक जनमत संग्रह को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने गैर कानूनी बताया है।
Han convocado una consulta interna de los partidos de la oposición.
इन लोगों ने विपक्षी पार्टियों के आंतरिक संयोजन के साथ अपनी प्रणाली से बिना किसी चुनावी नियम के, न ही किसी सत्यापन के, ये जनमत संग्रह करवाया है, जैसे कि वो कोई स्वायत्त संस्था हो और खुद ही फैसला करने के काबिल हों। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बांग्लादेश में पुलिस ने दावा किया है कि 4 संदिग्ध चरमपंथियों ने कई घंटों की मुठभेड़ के बाद समर्पण कर दिया है। ये चरमपंथी ढाका के बाहरी इलाके में एक मकान में छुपे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि चरमपंथियों ने सुरक्षा जवानों पर बम फेंके। ये चारों संदिग्ध नियो JMB संस्था के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की एक शाखा है। बांग्लादेश में साल भर में कई अल्पसंख्यकों, सेक्युलर लेखकों और ब्लॉगरों को निशाना बनाए जाने पर इसी संगठन पर आरोप लगते रहे हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव। श्रोताओं, मौसम मानसून का है और मौसम विभाग की ओर से आज दोपहर जारी सूचना के मुताबिक पूर्वी भारत में अंडमान निकोबार और ओडिशा, मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर भारत में हिमाचल और उत्तराखंड, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के तटीय हिस्से और पश्चिम भारत में सौराष्ट्र और गुजरात में बादल छाए हुए हैं और कई जगह बारिश भी हो रही है। बात राजनीति की करें तो संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान भी है। बारिश के बीच छाते के मायने अलग हैं और राजनीति में थोड़े अलग। राष्ट्रपति चुनाव और संसद सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बैठकों के जरिए अपने छातों के नीचे समर्थकों का अंदाजा लगाया। दिल्ली में दो सर्वदलीय बैठकें भी हुई। संसद में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को सुचारू तरीके से चलाने के लिए सभी से सहयोग देने को कहा। प्रधानमंत्री ने बात गोरक्षा की भी की और इस नाम पर हिंसा करने वालों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ कहा, पूरा ब्यौरा सुनिए रजनीश कुमार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मानसून सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने गौरक्षा को अराजकता फैलाने का माध्यम बना लिया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने मीडिया को प्रधानमंत्री के बयान की जानकारी दी।
गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार का अहम जिम्मेदारी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करे।
गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को लेकर विपक्ष का रुख लगातार आक्रामक रहा है और विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते महीने गुजरात में कहा था कि गोभक्ति के नाम पर हो रही हत्याएं स्वीकार्य नहीं है। आज की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गायों की रक्षा कानून के जरिए होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दलों को एक साथ आना चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी अपने समापन में ये भी कहा गोरक्षा के बारे में और बाकी विषयों के बारे में राजनीतिक रंग और सांप्रदायिक रंग दे करके उसका राजनीतिक लाभ उठाने का होड़ शुरू हुआ है, लेकिन उससे देश का कोई फायदा नहीं होगा।
बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों और विधायकों से कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने मानसून सत्र में सार्थक विचार मंथन होने की उम्मीद भी जताई।
रिपोर्ट सुना रहे थे रजनीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी, लेकिन उनके आज के बयान को विपक्ष किस तरह से देख रहा है, मैंने यही सवाल पूछा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी से।
किसी एक भी गोरक्षक पर अभी तक कोई कार्यवाही किसी सरकार ने, केंद्र की या राज्य की बीजेपी की, किसी ने की है? फिर ये थोथे बयान देने से क्या होगा? तुम्हारे राज्यों में ही तो हो रहा है जो कुछ हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में तुम्हारे ही लोग ये कर रहे हैं। जो तुम्हारे गोरक्षक जो बने हुए हैं ये सब कौन है? तुमने किसी एक को भी पार्टी से निष्कासित किया? और केस चलाना, गिरफ्तार करना, बंद करना छोड़ो, तुमने किसी के विरुद्ध कोई पार्टी के अंदर कोई कार्रवाई करी? फिर इन बयानों का क्या मतलब है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के।
मानसून सत्र के ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये बयान आना, पहले भी वो इस तरह की बातें कर चुके हैं।
पहले भी एक बार उन्होंने ये बयान दिया था, 2 महीने पहले ऐसा ही एक बयान प्रधानमंत्री ने पहले दिया था, लेकिन वही घटनाएं निरंतर जारी रही, करने वाले लोग भी वही, सब नाटक। उनसे कह रखा है तुम करे जाओ और यहाँ हम बयान देते रहेंगे लोगों को दिखाने के लिए, देखिए भाई हम तो मना कर रहे हैं।
विपक्ष क्या कुछ सोच लेकर मानसून सत्र में जाएगा?
विपक्ष सरकार के हर गलत फैसले और हर गलत कार्यवाही और देश में व्याप्त जो समझन समस्याएं हैं उनको समग्र रूप से इन दोनों सदनों में उठाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी, विपक्ष के नाते जो हमारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ हम निभाएंगे।
विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। गोरक्षा, किसान और पड़ोसी देशों के साथ नीति, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष मानसून सत्र में सरकार से सवाल पूछने के इरादे में है। तैयारी सरकार ने भी की हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकेत भी दिया। मोदी ने आज कहा कि भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई जरूरी है। उनके बयान को राष्ट्रीय जनता दल नेताओं पर हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। बयानबाजी के इस दौर के बीच बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन पर आशंका के बादल छाए हैं और आज पटना में एक के बाद एक मीटिंग होती रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग के बाद सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
नहीं, किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के चुनाव की चर्चा हुई है।
नीतीश कुमार की छवि को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था और तेजस्वी का इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, इसे आपको लगता है कि महागठबंधन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है?
उस संबंध में अभी तक इसमें आज तक कोई बातचीत नहीं हुई है और इस संबंध में तो पार्टी के प्रवक्ता लोग से आपको जानकारी मिलती ही रहती है।
और श्रवण कुमार ने जो कहा उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की भी बैठक हुई। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पटना से नीरज सहाय, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में राष्ट्रीय जनता दल की, क्या खबर आ रही है। नीरज, लगता है नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लाइन नहीं मिल पा रही है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और बिहार की उम्मीदवार मीरा कुमार भी बिहार से आती हैं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी आशंका है, लेकिन सिर्फ बिहार में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी, जहां सबसे ज्यादा सांसद और विधायक हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
राष्ट्रपति चुनाव में यूं तो दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों के बीच सीधा और एकतरफा मुकाबला है, फिर भी उत्तर प्रदेश में ये मुकाबला दिलचस्प बन गया है। दोनों गठबंधनों में शामिल पार्टियां किस उम्मीदवार को वोट कर रही हैं और किसे नहीं कर रही हैं, ये लगभग तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टियों के भीतर क्या चल रहा है, इसे लेकर अभी तक चर्चाएं गर्म हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में तो मतभेद स्पष्ट हैं, इसलिए पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है। पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने दो दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए।
अभी मुझसे तो केवल रामनाथ कोविंद ने ही वोट मांगा है, स्वयं मांगा है उन्होंने, और किसी ने मांगा नहीं, न किसी ने हमको कहा। तो मैंने तो मन बना लिया है, जिसने अभी तक मांगा है तो उसी का मैंने मन बनाया है।
वहीं शुक्रवार को जब वोट मांगने के लिए यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार लखनऊ आई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया और पार्टी का रुख भी स्पष्ट किया।
कुमार जी का समर्थन हमारी पार्टी ने किया है, तरह दलों ने जो तय किया है, कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम दल जिन्होंने तय किया, हमारी पार्टी का पूरा सहयोग।
लेकिन बताया ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद और विधायक मुलायम सिंह के कहने पर शायद एनडीए के उम्मीदवार को वोट दें। वहीं बीएसपी में भी क्रॉस वोटिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। अभी तक किसी भी पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया है, इसलिए यह आशंका और बढ़ गई है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन कहती हैं,
देखिए ऑपोजिशन में शिवपाल जी और मुलायम सिंह दो सबसे बड़े जो वोट है समाजवादी पार्टी के, वो जा रहे हैं कोविंद को, एनडीए के कैंडिडेट को, उन्होंने ओपनली बोला है और सपोर्ट करा है। मीरा कुमार को एसपी अखिलेश ग्रुप एंड मायावती से मिलेंगे, मायावती के भी दो तीन लोग हो सकता है क्रॉस वोटिंग करे, बट मुझे लगता है कि ये जो दल है आप समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस कर सकती है विप इशू, मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी विप इशू करेगी।
कुछ निर्दलीय विधायकों के मतों पर भी लोगों की निगाहें हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायकों को चुनाव संबंधी जानकारी के लिए आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के घर पर दावत दी गई है। इन सब के बीच सोमवार को यूपी विधानसभा शायद अकेली विधानसभा हो जहां दो मुख्यमंत्री वोट डालेंगे और दोनों सांसद की हैसियत से, एक यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और दूसरे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, जो कि यूपी से ही राज्यसभा सदस्य हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
बारिश के मौसम में संगीत सुनने का भी अपना एक अलग ही मजा है और श्रोताओं को इंतजार होगा हमारी साप्ताहिक प्रस्तुति संग संग गुनगुनाओगे का। संगीत और कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र आज बात कर रहे हैं महान संगीतकार सज्जाद हुसैन की। अरबी शैली में धुने सजाने वाले सज्जाद हुसैन की रचनाओं ने उन्हें संगीत की दुनिया में अमर बना दिया। इस विशेष श्रृंखला के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहनलाल शर्मा और संपादन किया है अजित सारथी ने।
संग संग गुनगुनाओगे कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
आज का एपिसोड इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे संगीतकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका जून माह में ही जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है। सज्जाद हुसैन। लयदार खिंचाव, हौले से गुजरने वाले उतार चढ़ाव, सुरों के सबसे चमकते हुए छड़ों में अल्प विराम रचने की कोशिश और गले को गोल गोल घुमाते हुए तीनों सप्तकों में आवाजाही कराने की कुशल कारीगरी का नाम है सज्जाद हुसैन। ये बात बहुत मशहूर रही है कि सज्जाद हुसैन को सिर्फ दो पार्श्व गायिकाएं ही समझ में आती थी, नूरजहां और लता मंगेशकर। उन्होंने कई दफे ये बात कही है कि उनकी निगाह में नूरजहां और लता मंगेशकर के अलावा कोई गायक या कोई फनकार मौजूद नहीं था। ये वो बात थी जिसके लिए कहा जा सकता है कि नूरजहां के लिए सज्जाद हुसैन बने थे और लता जी के लिए भी सज्जाद हुसैन एक जरूरी शय थे। यहाँ पर दोनों गायिकाओं की सुंदर धुनों को सुनना चाहिए।
बदनाम मोहब्बत कौन करे, बदनाम मोहब्बत कौन करे, और इश्क को रुतवा कौन करे, और इश्क को रुतवा कौन करे। बदनाम
ये भी कहा जाता है कि सज्जाद हुसैन अपने व्यक्तित्व में या अपने फन में डूबे हुए इतने परफेक्शनिस्ट थे कि उन्हें अपने पार्श्व गायिकाओं से मेहनत कराना बहुत भाता था। एक एक धुन को लेकर के की गई बारीक पच्चीकारी का काम और समय से या अपने वर्तमान संगीतकारों के काम से थोड़ा विचलन लिए हुए थोड़ा तिरछा रास्ता ही सज्जाद हुसैन का रास्ता था। वैसे तो सज्जाद हुसैन को लता जी प्रिय थीं और नूरजहां, लेकिन उन्होंने सुरैया के लिए एक ऐसी अमर धुन बनाई है जो आज भी याद करने पर दिल को खुशनुमा रंगत से रंग देती है। रुस्तम सोहराब के इस गीत में सुरैया की आवाज देखनी चाहिए।
ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है।
सज्जाद हुसैन मैंडोलिन बजाने में बड़े प्रवीण थे। जब लोग पियानो पर, एकॉर्डियन पर और तमाम दूसरे वाद्यंत्रों पर धुनें बनाने में आगे रहते थे, ये सज्जाद हुसैन हैं जिन्होंने अपने मैंडोलिन को इस तरह साधा था कि वे उस पर भी कोई धुन रच सकते थे। उन्होंने दर्दीले गीतों को रचने में कामयाबी हासिल कर रखी थी। अगर हम लता जी के करियर से, हम नूरजहां के करियर से, हम सुरैया के करियर से कुछ अनमोल मोती चुने तो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग जो दर्द का होगा उसमें एक गीत सज्जाद हुसैन का जरूर मौजूद होगा। लता जी के इसी तरह के एक गीत को सुनना चाहिए जो शायद उनके करियर में मील के पत्थर सरीखा है।
वो तो चले गए दिन याद से उनकी प्यार
बातचीत के दौरान लता मंगेशकर ने मुझे एक बात बताई थी कि मेरे लिए सबसे जटिल धुने सलिल चौधरी, अनिल विश्वास और सज्जाद हुसैन बनाते थे। रुस्तम सोहराब के इस गीत को उन्होंने अपने करियर के कठिनतम गीतों में शामिल किया है। वे जब इस तरह की धुनों को याद करती हैं तो उसके पीछे की तैयारियां, उनके अभ्यास और उसमें तमाम तरह के किए गए कामों को देखती हैं। इस गीत को सुनना चाहिए जो लता जी के करियर में उसी तरह जगमगा रहा है जिस तरह से सज्जाद हुसैन के अपने हुनर में ये गीत कुछ नए अर्थ लेके आता है। सज्जाद हुसैन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके लिए गाते समय पार्श्व गायकों और गायिकाओं को दिक्कत होती थी, उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें सम पे आने के लिए या ऑफ बीट ट्रैक पे गाने के लिए थोड़ी दिक्कतें पेश आती थी और ये सायास होता था। मतलब सज्जाद हुसैन जानबूझकर ऐसी धुनें बनाते थे जिसमें अतिरिक्त मेहनत कलाकार को देनी होती थी। उन्हें लगता था कि संगीत जितनी पवित्र चीज़ है और उसमें जितने तरह के इनोवेशन और नवाचार हम कर सकते हैं, उसमें गायकों और गायिकाओं को अपनी सीखी हुई और अभ्यास की हुई धुनों पर भी कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए। और जब हम उनके छोटे से करियर में कुछ फिल्मों को देखते हैं, खासकर हलचल, खेल, दोस्त, सैयां और रुस्तम सोहराब जैसी फिल्मों को, संगदिल को, तो हमें ये समझ में बात आती है कि कैसे एक बड़ा चितेरा अपनी आधा दर्जन फिल्मों के बहाने हिंदी फिल्म संगीत पर राज कर रहा है। शास्त्रीयता और कुछ कुछ अरबी धुनों की बहर पर बहता हुआ सज्जाद हुसैन का संगीत, ये तो उनका एक प्रामाणिक अंग है ही, लेकिन अगर उनकी बेहतरीन अदायगी को अगर हमें किन्हीं फिल्मों के माध्यम से देखना है तो ऐसी तीन फिल्में हैं जिनमें सज्जाद हुसैन का हुनर आकाश पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में खेल, सैयां और संगदिल जैसी फिल्मों को बार बार याद किया जा सकता है। संगदिल के इस गीत को सुनकर सज्जाद हुसैन के एक बिल्कुल नए तरीके के मूड को भी देखा जा सकता है।
बादलों के पार आजा बता ले नया संसार आजा बता ले नया संसार धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा बता ले नया संसार आजा बता ले नया संसार।
अपने ऑफबीट मूड के कारण नए नए ढंग के प्रयोगों के चलते और फिल्म संगीत के प्रिल्यूड और इंटरल्यूड्स में कई बार अरबी संगीत के टुकड़ों को सजाने की युक्ति के चलते सज्जाद हुसैन एक बिल्कुल नई जमीन पर खड़े हैं। और ये देखना भी दिलचस्प बन जाता है कि सज्जाद हुसैन के पास गायकों गायिकाओं की जो टोली है वो बहुत छोटी सी है, जिसमें सुरैया, नूरजहां और लता मंगेशकर ही सबसे बड़े सितारों के रूप में चमक रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी फिल्म में तलत महमूद, आशा भोसले से भी गीत गवाए। आशा जी की आवाज में भी उनसे वही शानदार काम सुनना चाहिए जो कहीं सज्जाद हुसैन नुमा एक टोन आपके दिमाग में गुंजाता है।
अब देर हो गई वल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला, अब देर हो गई वल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब देर हो गई वल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब देर हो गई वल्ला, अब देर हो गई वल्ला।
जब आज हम उनकी जन्म शताब्दी में उनको याद कर रहे हैं तो उनकी दुरूह धुन यात्रा को देखते हुए ये समझ में बात आती है कि कैसे उन्होंने एक अपनी अलग राह और अलग पहचान बनाई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के गीत एकला चलो रे को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि हिंदी फिल्म संगीत में जो एकला चलो रे का पथ है उस पर सबसे गंभीरता से अगर कोई चला है तो वे सज्जाद हुसैन ही थे। अंत में हम उनकी प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए और उन्हें इस शताब्दी वर्ष में याद करते हुए प्रणाम करते हैं और ये गीत आप सभी को सुनाते हैं जो उनके द्वारा रचा हुआ एक बड़ा ही शानदार गीत है।
श्रोताओं, ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप इसे हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं। और अब रुक करेंगे विंबलडन कोर्ट का, जहां पर रोजर फेडरर आठवां अजूबा करने की तैयारी में है। स्टूडियो में आ चुके हैं आदेश कुमार गुप्त। लेकिन आदेश जी, आपके पास आने के पहले एक मिनट के लिए मैं श्रोताओं को ले जाना चाहूँगा बिहार की राजधानी पटना, जहाँ से हमारे साथ जुड़ गए नीरज सहाय। नीरज, आज दिन भर बैठकों का दौर हुआ, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहते हैं कि JDU, RJD, BJP, कांग्रेस सबकी मीटिंग से क्या कुछ निकला।
देखिए वात्सल्य, आज बिहार में तमाम सियासी अटकलों और कयासों के बीच बैठकों का दौर शुरू सुबह से ही जारी रहा। सबसे पहले 4 बजे शाम में जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई। उस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि बैठक पूर्ण रूप से और एकदम
राष्ट्रपति चुनाव पर आधारित थी। उनका बयान हमने सुनाया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि RJD की बैठक में से कोई महत्वपूर्ण बात सामने आई है राष्ट्रपति चुनाव के अलावा।
RJD की बैठक 5 बजे राजद प्रमुख लालू प्रसाद की आवाज पर हुई। उसमें बैठक के बाद वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी वही बात दोहराई जो जदयू की तरफ से बोला गया था। हालांकि उनसे ये सवाल करने पर, तेजस्वी यादव से जुड़े मामले पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि जो विधानमंडल दल की बैठक में फैसला हो चुका है, जो निर्णय हो चुका
है वही फाइनल है। बहुत शुक्रिया नीरज, आपने पूरी जानकारी दी। आदेश जी, बॉल अब आपके कोर्ट में है, बताइए फेडरर क्या धमाल कर रहे हैं।
जी, बॉल तो फेडरर के कोर्ट में चली गई है, क्योंकि 28 साल के हैं यहाँ पर मारिन चिलिच और फेडरर हैं 35
साल के। 6'6" उनकी हाइट की भी बड़ी बात हो रही है,
7 साल का अंतर है। लेकिन इसके बावजूद चिलिच 7 बार के चैंपियन, फेडरर को 8वीं बार चैंपियन बनने से रोक पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेडरर ने बहुत ही एक तरफा अंदाज में पहला सेट 6-3 से जीता और दूसरा सेट तो 6-1 से जीता।
और ये रिकॉर्ड बताता है कि जब वो विंबलडन में पहले 2 सेट जीत लेते हैं तो 99% जीत उनकी होती है, केवल 1 बार वो हारे हैं।
जी हाँ, और इस बार तो विंबलडन में वो 1 भी सेट नहीं हारे हैं। और देखिए कि अगर वो 8वीं बार इसको जीते हैं,
8 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है, वो तो ये 36 साल के होने जा रहे हैं।
और इससे पहले विंबलडन को 9 बार ही एक खिलाड़ी ने जीता है, वो एक रिकॉर्ड है। तो ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी होंगे विंबलडन के इतिहास में जिनके खाते में इतने खिताब होंगे। और वैसे भी इस पूरे टूर्नामेंट में जो फेडरर की फिटनेस है वो कमाल की थी, लेकिन चिलिच ने जिस तरह से सेमीफाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, तो उससे एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रास कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल जैसे खिलाड़ियों के साथ जब टक्कर होती थी या फिर दूसरे खिलाड़ी, तब लगता था
यानी फेडरर को रोकना मुमकिन,
लेकिन
नहीं
यहाँ पर चिलिच जैसे खिलाड़ी के लिए मुश्किल है। और यहाँ पर फेडरर ने दिखा दिया कि इस कोर्ट के असली बादशाह वही है।
5 गेम वो दूर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया आदेश जी। और हरिता कांडपाल आ चुकी हैं हमारे साथ, आखिर में उनसे सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और कल ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान भी होना है। दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी दलों को साथ आने की अपील की। अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक बस जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिर गई, इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। गुजरात में पिछले 48 घंटों में बाढ़ के कारण 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वेनेजुएला में संविधान में सुधार के लिए नई असेंबली के गठन के सवाल पर अनाधिकारिक जनमत संग्रह के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।